नमस्कार भारत, आज है 19 अगस्त दिन शनिवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। फिनलैंड में चाकू से हमला, दो लोगों की मौत।
We heard some commotion outside and what intensity gunshots. I set outside to take a look. I heard screaming.
पुलिस का दावा, बार्सिलोना हमले का मुख्य संदिग्ध मुठभेड़ में मारा गया। चीन के साथ डोकलाम विवाद में भारत को मिला जापान का समर्थन।
जापान के जितने न्यूज़पेपर हैं उन्होंने यही कहा है कि ये बात जो है ये जोर से नहीं, समझौते से, बातचीत से सुलझानी चाहिए। जापान साथ जरूर देगा हिंदुस्तान को।
और क्या बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में 360 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी?
जिस तरह से अपोजिशन बिखरा हुआ है, बीजेपी को लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि 350 सीट का अगर वो रखते हैं, हासिल क्या होता है वो अलग की बात है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। फिनलैंड में चाकू मारने की घटना में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं बार्सिलोना में कल हुए चरमपंथी हमले के बाद पुलिस का कहना है कि चरमपंथी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। हमले के मुख्य संदिग्ध मूसा ओ कबीर की पहचान उन 5 संदिग्धों में की जा रही है जो कैम्ब्रिल्स में पुलिस कार्रवाई के दौरान मारे गए थे। बार्सिलोना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल हजारों लोग उमड़े। वहीं कैटलन नेता कार्लस पुचडेमोन ने कहा कि हमले के खिलाफ लोग एक हो गए हैं।
I en aquest sentit envia un missatge a la ciutadania de serenitat, de confiança.
मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि वो शांत रहें और आत्मविश्वास रखें। हम चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और हम फिर से एक सामान्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम अपनी चुने हुए सभ्य समाज के साथ जीना चाहते हैं। ये थे कार्लस पुचडेमोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने चीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी के मामले में आधिकारिक तौर पर जांच शुरू की है। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश दिया था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए जिसमें चीन की तरफ से अमेरिकी कंपनियों पर तकनीकी जानकारी देने का दबाव बनाया जाता है। चीन ने कहा है कि इस तरह की जाँच से दोनों देशों के संबंधों को नुकसान होगा। कीनिया के विपक्षी गठबंधन नासा ने पिछले हफ्ते के राष्ट्रपति चुनाव के विवादित नतीजों को देश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विपक्षी गठबंधन के नेता रायला ओडिंगो कई बार चुनाव में धांधली का आरोप लगा चुके हैं। रायला ओडिंगो ने पहले तो कहा था कि वो अदालत में नतीजों को चुनौती नहीं देंगे लेकिन इसी हफ्ते गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया कि अदालत में चुनाव में हुई बड़ी धांधली के सबूत पेश किए जाएंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने राष्ट्रपति चुनाव में उहुरु केन्याटा के चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बताया है। 2013 में विपक्ष के नेता ओडिंगा ने चुनावी नतीजे को चुनौती दी थी लेकिन वो हार गए थे। वेनेजुएला में विवादित कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने विपक्ष के बहुमत वाली कांग्रेस की शक्तियां अपने तहत लेने के लिए वोटिंग की है। इसके पक्ष में बहुमत में वोट पड़े हैं। अब से वेनेजुएला में कानून इसी असेंबली के जरिए पारित किए जाएंगे। ये नई कंस्टिट्यूएंट असेंबली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की योजना का नतीजा है। वो अपने खिलाफ चल रहे राजनीतिक विरोध को तोड़ने के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बढ़ावा दे रहे थे लेकिन इससे राजनीतिक गतिरोध बढ़ा है। वेनेजुएला में निकोलस की सरकारी नीतियों के खिलाफ कई महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष ने इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव का विरोध किया था और कई देशों ने भी इसे अलोकतांत्रिक करार दिया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के नेता एल्विस अमोरो ने यह कहा।
डेक्रेटा प्रिमेरो असुमिर लास कॉम्पिटेंसिया पारा लेजिस्लार।
अब न्यायिक फैसला हो चुका है। अब शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय तंत्र को बनाए रखने के लिए और सरकारी संपत्ति और वेनेजुएला के लोगों के अधिकार को बनाए रखने के लिए कानून बनाने का जिम्मा हमें मिलने का फैसला हो चुका है। ये थे एल्विस एमारो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। इससे पहले व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली ने बैनन की स्थिति की समीक्षा की थी और बैनन एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता हैं जो ट्रंप के साथ चुनाव के दौरान भी जुड़े हुए थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। गौ मांस कथित रूप से खाने की वजह से मुसलमानों को धमकाने का भारत में एक और मामला फिर सामने आया है। ताज़ा घटना हुई है बिहार में, हम आएंगे इस खबर पर थोड़ी ही देर के बाद। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं यूरोप से, जहां लगातार दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ है जिसने लोगों को सोचने पर विवश कर दिया है। बार्सिलोना में चरमपंथी हमले के अगले ही दिन फिनलैंड में एक शहर में चाकू से लोगों पर हमला किया गया है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और 7 अन्य घायल हुए हैं। पूरी जानकारी के साथ हरिता कांडपाल।
बार्सिलोना में चरमपंथी हमले के 24 घंटे बाद यूरोप के ही फिनलैंड में चाकू मारने की घटना सामने आई है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। टुर्कुश शहर में कई लोगों को चाकू मारने के बाद एक संदिग्ध को पुलिस ने गोली मारी थी। पुलिस का कहना है कि पैर में गोली लगने के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। घायल सभी लोग पुलिस के मुताबिक वयस्क हैं और फिनलैंड के मीडिया के मुताबिक इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और हमले का शिकार हुई एक महिला है जिस पर चाकू से कई वार किए गए थे। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक चश्मदीद 17 साल के एंटनी न्यूमन ने बताया,
We heard some commotion outside and what appeared to be gunshots. I set outside to take a look.
हमने बाहर देखा कि काफी अफरा तफरी थी। मैं बाहर निकला तो देखा कि लोग चिल्ला रहे थे। मैंने लोगों को घटनास्थल से भागते हुए देखा। हमें अंदर जाने के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने बताया कि चाकू लेकर उन पर हमला हुआ है और सड़क पर कई लोग गिरे हुए थे। ये थे एंटनी न्यूमेनन के शब्द। फिनलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि ये चरमपंथी हमला था। हालांकि फिनलैंड की आंतरिक मंत्री पॉला रिसिको ने कहा है कि संदिग्ध विदेशी नजर आता है और उन्होंने इस हमले को बार्सिलोना के चरमपंथी हमले से जोड़कर देखा है।
Suojelupoliisi on selvittämässä, että löytyykö tätä henkilöä jostain rekistereistä.
सुरक्षा बल संदिग्ध हमलावर के रिकॉर्ड की छानबीन कर रहा है। हम अप्रवासन विभाग के संपर्क में भी हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें हैं कि ये व्यक्ति फिनलैंड का नहीं है। ये थे पॉला रिसिको के शब्द। बार्सिलोना में गुरुवार को वैन से हमले के मुख्य संदिग्ध मूसा उकबीर की पहचान उन 5 संदिग्धों में की जा रही है जो कैम्ब्रिल्स में पुलिस कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। पुलिस ने इससे पहले कहा था कि मूसा और अन्य 3 संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है। बार्सिलोना में गुरुवार को जिस वैन से हमला किया गया था, माना जा रहा है कि उसे मूसा उकबीर ही चला रहा था। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध हमलावर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके लिए जरूरी चीजें नहीं होने की वजह से उन्होंने वैन से हमला करने का आसान रास्ता चुना।
बार्सिलोना हमले का मुख्य संदिग्ध मुठभेड़ में मारा गया, जबकि फिनलैंड में चाकू से हमले में 2 लोगों की मौत। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना आपने अभी हरिता कांडपाल की जुबानी।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
भारत चीन के बीच डोकलाम के मुद्दे को लेकर जापान ने कहा है कि विवादित क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जापान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या जापान डोकलाम के मामले में भारत के साथ है, और यदि ऐसा है तो कहां तक साथ दे सकता है? यही समझने के लिए मेरे सहयोगी आदर्श राठौर ने जापान की सोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकेश विलियम्स से बात की।
जापान के जितने न्यूज़पेपर हैं उन्होंने यही कहा है कि ये बात जो है ये जोर से नहीं, समझौते से, बातचीत से सुलझानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जैसे कि सेंकाकू आइलैंड की बात थी, वो चाइना जो है सेंकाकू के बारे में बात हुई थी तो वो दिखा रहा जोर जापान के खिलाफ नहीं, अमेरिका की तरफ दिखा रहा था। जब अमेरिका ने कहा कि हमारे पास ये एक समझौता है जापान के साथ कि अगर जापान को सेंकाकू को अटैक हुआ तो हम उसको जो भी करेगा अटैक, हम उस पर अटैक करेंगे, उसके बाद चाइना बिल्कुल थम गया। तो मेरा ख्याल है ये जो सिलसिला है, मोदी साहब गए थे अमेरिका, अमेरिका की तरफ काफी खिंचाव हो रहा है, खैर हिंदुस्तान का वो उनको पसंद नहीं है, और जापान साथ जरूर देगा हिंदुस्तान को, किस लेवल का साथ देगा ये हम नहीं कह सकते हैं। आप देखिए कि 13 और 15 सितंबर में आबे हिंदुस्तान आएंगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी।
जापान ने भारत की तरफ बयान दिया है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि साउथ चाइना सी को लेकर जिन मुल्कों से चीन का विवाद चल रहा है, क्या वो थोड़ा सा रणनीतिक प्रेशर बनाने के लिए, क्या वो भारत के पक्ष में आने वाले समय में और देशों से हम ऐसे बयान उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे बयानों की
बयान आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं, मगर कहां तक हमें सपोर्ट देंगे वो हम नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है हम अगर लड़ेंगे तो हम अकेले ही लड़ेंगे।
भारत की स्थिति इस वक्त आप कहाँ देखते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर?
बहुत अच्छी है। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने बहुत से देशों को अपनी तरफ खींच रखा है, चाहे चाइना में जो पब्लिक ओपिनियन है हमारे खिलाफ हो, मगर और दूसरे देशों में पब्लिक ओपिनियन हिंदुस्तान भारत की तरफ है। और हमारी इसलिए डिप्लोमेसी जो है बहुत अच्छी है, और हम काफी कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को कि दूसरे देशों को कि भाई हमारी जो पोजीशन है वो हम लड़ाई करने की नहीं है, वो हम समझौता की है, हम बातचीत से इसका हल करेंगे।
डोकलाम पर भारत चीन विवाद में जापान के रुख का विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर मुकेश विलियम्स। और आइए अब रुख करें भारत का, जहां बिहार में कथित गौमांस की वजह से मुसलमानों को धमकाने का मामला सामने आया है। पटना से मनीष शांडिल की रिपोर्ट।
ये घटना परसों गुरुवार की है। लाठी डंडों से लैस हिंसक भीड़ ने डुमरा गांव के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के ग्रामीणों के साथ मारपीट की और उनमें से कुछ को बंधक बना लिया। चनपटिया थाना के अंतर्गत आने वाला यह गांव पश्चिम चंपारण जिले के जैतिया पंचायत का हिस्सा है। बुधवार को इस इलाके के राजदेव शाह ने एक बछड़ा चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। भीड़ को शक था कि डुमरा के अल्पसंख्यक मुसलमानों में से कुछ ने इस बछड़े की पहले चोरी की और फिर मांस के लिए इसे मार डाला। घटना की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और मुस्लिम समुदाय से आने वाले पीड़ितों में से सात को गिरफ्तार कर लिया। इनमें स्थानीय मुखिया के पति कुदुश कुरैशी भी शामिल हैं। चनपटिया थाना प्रभारी राजेश झा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर इन सभी को जेल भेज दिया गया है।
लोगों का कहना था कि ये लोग अपने बच्चे को मारकर अपने बंटवारा कर लिया, उसी पर एफआईआर हुआ, नेम्ड किए हुए थे, उन लोगों को पकड़े हुए थे। हमारे चिन्ह पदाधिकारी लोग भी वहाँ पहुंचे, उसके बाद लोगों को घर से निकाला गया और एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा गया।
गिरफ्तार किए गए लोगों में से चार घायलों का इलाज भी चल रहा था। इन चारों को भी कल शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर जब पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर सवाल खड़े होने शुरू हुए तो पुलिस ने हमला करने वाले करीब दर्जन भर लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुदुस कुरैशी की पत्नी की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई है। नुमरा गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिहार में दूध देने वाली गाय और बछड़ों को मारना प्रतिबंधित है, लेकिन बीफ के उपभोग पर कोई रोक नहीं है। एक महीने के अंदर गौरक्षा के नाम पर हिंसक भीड़ द्वारा की गई यह दूसरी कार्रवाई है। इसके पहले अगस्त महीने के शुरू में भोजपुर जिले में हिंसक भीड़ ने कथित रूप से एक ट्रक से बीफ ले जाने के आरोप में तीन लोगों से मारपीट की थी। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक में 360 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। यहां सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत भी पाएगी? मेरे सहयोगी आदर्श राठौड़ ने वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह के सामने यही सवाल रखा।
जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसके बाद बीजेपी का ये लक्ष्य रखना मुझे लगता है स्वाभाविक है। जो तमाम एजेंसी के सर्वे भी आए हैं कुल मिलाकर के बीजेपी के फेवर में, या जो अभी तक हालात हैं आज की तारीख में, और जिस तरह से अपोजिशन बिखरा हुआ है तो उससे बीजेपी को लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि 350 सीट का अगर वो रखते हैं।
क्या ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश भी है विपक्षी पार्टियों पर, जब सब लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं?
लेकिन निश्चित तौर पर आप जानिए कि ये रणनीति का एक हिस्सा होता है। आप देखते हैं कि कोई भी पार्टी जिसकी जमानत जब्त होने जाती है वो भी अंतिम दम तक कहता रहता है कि सरकार हम ही बनाएंगे। तो बीजेपी तो ऑब्वियस है, बीजेपी के पास तो इस समय कहने को उसके साथ एक तर्क भी है ना। अब आप अगर देखें इस समय के हालात है देश में क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी अगर आप चले जाएं और कामरूप से कच्छ तक, तो अब वो वहां भी देखा आपने लेटेस्ट तमिलनाडु का जो डेवलपमेंट है उसका, वो कुछ कुल मिलाकर के बीजेपी के फेवर में आ रहा है। तो एक जो कभी किसी समय में जो कांग्रेस का वो हुआ करता था, सीटें चाहे भले कम हो लेकिन एक उसका फैलाव जो होता था क्षेत्रफल के मामले में, जो कभी कांग्रेस होता था आज बीजेपी का है। जो राष्ट्रीय पार्टी चुनौती देने वाली थी वो खुद राष्ट्रीय पार्टी अब क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़ी हो गई है। तो ऐसे दशा में बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है कि जब हम अकेले एक राष्ट्रीय पार्टी हैं तो लक्ष्य हमेशा एक बड़ा रखो, हासिल क्या होता है वो अलग की बात है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर हरिता कांडपाल के साथ।
जी, जैसे अभी हम बातचीत सुन रहे थे बीजेपी के विस्तार के बारे में, तो कांग्रेस के लिए एक चिंता की खबर जो है जनसत्ता के पहले पन्ने पर मैं देख रही हूँ। मोदी और हुड्डा की मुलाकात से हरियाणा कांग्रेस में हलचल है। इसमें बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से दो बार मिल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और इससे लेकर जो है कांग्रेस हाईकमान के लिए एक बड़ा संकेत है, ऐसा अखबार ने लिखा है। इसके अलावा जनसत्ता के पहले पन्ने पर एक और खबर है, गुजरात चुनाव में राहुल को आगे नहीं करेगी कांग्रेस। शायद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। और जनसत्ता की ही मैं बात कर रही हूँ, चीन के विस्तारवाद के खिलाफ पंच गोलबंदी। अमेरिका, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशियाई प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, तो चीन की भी यहाँ पर गोलबंदी की बात हो रही है। बात करें चीन की ही बात करें तो मोदी तनातनी के बीच चीन जाएंगे, शांति का संकेत देने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है, ये ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जाना है। इसके अलावा कॉल ड्रॉप्स बंद करने के लिए जो है इस पर एक कदम की खबर मैं सारे ही अखबारों में देख रही हूँ। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि कॉल ड्रॉप बंद ना किया तो 10 लाख का जुर्माना होगा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये कड़ा संकेत है। इसके अलावा गोरखपुर का मामला भी आज के अखबारों में देख रही हूँ। यूपी सरकार बताया कि बच्चे कैसे मरे, हिंदुस्तान की हेडलाइन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह सवाल पूछा है, यह सवाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पूछा गया है, जहां पिछले दिनों कई बच्चों की मौत हो गई थी और बहुत इस मामले की चर्चा होती रही थी। इसके अलावा द हिंदू अखबार ने लिखा है कि एआईएडीएम के जो दो धड़े हैं ओपीएस और जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो धड़ा है उसमें जो मर्जर होने की बात थी वो फिलहाल टल गई है। द हिंदू अखबार लिखता है कि ओपीएस का जो धड़ा है यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम का, उन्होंने जो है अपने शशिकला को जो है वो हटाने की मांग रखी है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक का नाम आपने सुना होगा। 17 अगस्त 1988 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उस समय वो बहावलपुर में अमरीकी सैनिक टैंकों का प्रदर्शन देखकर इस्लामाबाद लौट रहे थे। उनकी मौत के 29 साल बाद भी आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसके पीछे, उनकी मौत के पीछे किसका हाथ था। जनरल जिया की बरसी पर उनकी मौत के रहस्य से जुड़े कुछ तथ्यों पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
सत्रह अगस्त 1988 पाकिस्तान का बहावलपुर एयरबेस, समय दोपहर 3:46। अमेरिका में बने हरकुलिस C-130 विमान ने टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू किया। विमान में जनरल जियाउल हक के साथ बैठे थे पाकिस्तानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत आर्नल्ड रफेल, पाकिस्तान में अमरीकी एड मिशन के प्रमुख जनरल हर्बर्ट वासन और पाकिस्तानी सेना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी। जनरल जिया बहावलपुर गए थे नए अमरीकी टैंक MI एब्राम्स का परीक्षण देखते। शुरू में वे वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी फौज के ही कुछ अधिकारियों ने उन पर जोर डाला कि वो वहां जरूर जाएं। जनरल जियाउल हक के पुत्र एजाजुल हक याद करते हैं।
उन दिनों में एक तो उनकी ट्रैवलिंग पर ममानत किस्म का उन्हें वार्न किया गया था वजारत दाखला की जानब से, और दूसरा वो जिस दौरे पर गए थे उस दौरे पर जाने की उनकी इतनी ख्वाहिश भी नहीं थी, और बाद में हमें मालूम हुआ कि कुछ साथियों ने उन्हें मजबूर किया इस दौरे पर जाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्लान हुआ हुआ था कि इसको वहाँ पर एक सैबोटाज और ये जो बाद में मामला हुए जहाज के, तो उनको कहा भी उन्होंने बहुत अपने करीबी एड्स को कि ये मालूम नहीं कि क्यों मुझे रोजाना फोन करके इसरार कर रहे हैं कि ये से ऐसी एक एक्सरसाइज पे जिसपे कि यानी कि कोई डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस या डीजी टेक्निकल ट्रेनिंग या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा सकते थे।
पाक वन के कॉकपिट की कमान संभाली हुई थी विंग कमांडर मासूद हसन ने, जिनको इस जिम्मेदारी के लिए खुद जनरल जियाउल हक ने ही चुना था। जैसे ही विमान पूरी तरह से हवा में आया, बहावलपुर के कंट्रोल टावर ने विंग कमांडर मासूद हसन से एक रूटीन सवाल पूछा, अपनी पोजीशन बताइए। मासूद ने जवाब दिया, पाक वन स्टैंड बाई। इसके बाद माशूद चुप हो गए। कंट्रोल टावर उनसे संपर्क करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार। टेक ऑफ के कुछ मिनटों के अंदर पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण विमान पाक वन लापता था। लेकिन इस बीच हवाई अड्डे से करीब 18 किलोमीटर दूर कुछ ग्रामवासियों ने आकाश में देखा कि पाक वन रोलर कोस्टर अंदाज में हवा में कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा था। तीसरे लूप के बाद वो सीधे नाक के बल रेगिस्तान में गिरा और चारों तरफ आग का गोला फैल गया। समय था 3:51। लगभग उसी समय पाकिस्तानी सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा असलम बेग ने बहावलपुर हवाई अड्डे से अपने छोटे टर्बो जेट में उड़ान भरी। मिनटों में वो इस स्थान के ऊपर थे जहां जनरल सिया के विमान का मलबा जल रहा था। उन्होंने उस स्थल का ऊपर से ही चक्कर लगाया और अपने विमान चालक को आदेश दिया कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ो।
कोई 5-7 मिनट के बाद मेरा जहाज उड़ा है, तो मैं अभी कोई टेक ऑफ करने के 7-8 मिनट के बाद मुझे खबर मिली कि जनरल सियार का जहाज जो है वो क्रैश हो गया है। तो देन आई टर्न बैक और व्हाइल कमिंग बैक आई फाउंड दैट द प्लेन हैड क्रैश्ड नियर द रिवर। तो आई सर्किल्ड ओवर एंड देन वहाँ पे जो हमारे लोग थे कुछ पहुँच गए थे जो मुल्तान वापस जा रहे थे। तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, देयर इज नोबडी अलाइव। तो फिर हम सोचते रहे कि अगर हम बहावलपुर वापस जाते हैं वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर बुलाएंगे, वो आएगा आना जाना। तो शाम को वहाँ से टेक ऑफ करने की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। तो देन आई थॉट के हम वापस जाएं। हमारे जहाज में उस वक्त ब्रिगेडियर करामत भी थे। तो हमने पूछा कि बेहतर यही है कि हम वापस चलें पिंडी, कुछ नहीं मालूम कि क्या होने वाला है।
पाकिस्तानी जांच में पाया गया कि ये दुर्घटना षड्यंत्र की वजह से हुई और विमान के एलिवेटर बूस्टर पैकेज से छेड़खानी के सबूत पाए गए। मैंने तत्कालीन ISI प्रमुख हमीद गुल से उनकी मौत से पहले पूछा था कि आपकी नजर में इस दुर्घटना के पीछे कौन हो सकता है।
असैसिनेशन उनकी की गई, वो एक हादसा नहीं था। और मेरा ख्याल है जो इंक्वायरी की गई उसने भी यही बात बताई थी। मैं अपने तमाम एनालिसिस के अंदर बाद में ये बताता रहा हूँ कि मेरी उंगली तो अमेरिका की तरफ उठती है। बिला शुबा उन्हीं को इससे फायदा हुआ, पाकिस्तान को उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया और उस वक्त से लेके अब तक हमारी हालत जो है वो जवाल पजीर ही नजर आ रही है। जहां तक ISI का तल्लक है इसमें कोई शुबा नहीं है कि फेलियर था, लेकिन ISI बाकायदा अपने खतूत के जरिए से प्रेजिडेंट ऑफिस को इन्फॉर्म कर रही थी कि प्रेसिडेंट की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और उनकी जिंदगी को खतरा है। कुछ हमें इस किस्म के इशारे मिल रहे थे कि बहुत सी कुव्वतें उनके साथ बहुत नाराज हैं और हमें ख्याल था कि गालिबन कहीं ना कहीं कोई बॉडी ब्लो या कोई ऐसी वारदात करने की कोशिश होगी।
लेकिन उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख आनंद कुमार वर्मा का मानना था कि CIA के पास सिया को हटाने के पर्याप्त कारण नहीं थे। और फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस विमान में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत भी सवार थे।
CIA का कोई इंटरेस्ट नहीं था जियाउल्लाह को रास्ते से हटाने का, बल्कि CIA को मदद मिल रही थी उनसे अफगानिस्तान में। और CIA इस तरह की हरकत अब नहीं करती है, प्रेसिडेंशियल अनुमति चाहिए ऐसी हरकत करने के लिए।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसके पीछे जनरल जिया से असंतुष्ट जनरल भी हो सकते थे। और जिस तरह से जनरल मिर्जा असलम बेग एक अलग विमान से बहावलपुर से उड़े और दुर्घटना का पता चलते ही वापस बहावलपुर आने के बजाय इस्लामाबाद चले गए, उस पर भी कई उंगलियां उठी। जनरल जियाउल हक के पुत्र इजाजुल हक ने BBC को बताया।
इतना बड़ा हादसा होने के बाद अगर आप टेक ऑफ कर रहे हैं और उस इलाके के ऊपर जाकर अपने तैयारी के जरिए उसका जायजा ले रहे हैं तो ये एक नॉर्म्स के अंदर आता है, यानी कि आपके सदर पाकिस्तान, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इतना बड़ा हादसा और आपके इतने कोलीग्स उसके साथ 29 के करीब, तो आपने इतनी तकलीफ नहीं की कि आप वहां पर उतरते और उतरने के बाद खुद जायजा लेते। आपने फौरी कोशिश की कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं और इस्लामाबाद पहुंचकर उनका इरादा था टेक ओवर करने का, लेकिन उस के सदर गुलाम इसहाक खान और उनके साथ एयर चीफ और कुछ गवर्नर सरहद, जिन्होंने बड़ा इसरार करके उन्हें कहा कि नहीं ये जमहूरी तरीका और आईनी तरीका जो है वो चलेगा।
जब मैंने ये तथ्य मिर्जा असलम बेग के सामने रखा तो उन्होंने उसका जोरदार खंडन किया। उनका कहना था कि जनरल जिया उन्हें विमान में बैठाना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ही कहा कि आप तो अपना जहाज लाए हैं, आप उसी में आइए।
तरीका ये होता है कि जब चीफ आ रहा है तो मुझे रिसीव करना होता है। अगर मैं उसी जहाज पे जाऊंगा तो रिसीव कैसे करूंगा? पहले गया, उनको रिसीव किया, उनको पूरा डेमोंस्ट्रेशन देखा, कंडक्ट किया, तो वापसी में ये हमारा ये एक है वसूल जो जनरल रिया खुद वायलेट करते थे। वी डिडंट वांट टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट कि सारे सीनियर अफसर हम एक जहाज में या एक हेलीकॉप्टर में बैठा दें, लेकिन आदत थी कि जिसको पसंद करते थे आओ बैठ जाओ। कोई 6-7 और अफसर थे जिनको उन्होंने बैठा लिया, उनका मैनिफेस्ट में नाम भी नहीं था।
दूसरी तरफ 1988 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे आनंद कुमार वर्मा ने ये रहस्य उद्घाटन किया था कि बहुत कम लोगों को पता है कि जिस समय सिया की मौत हुई उस समय भारत और पाकिस्तान सियाचिन का समाधान ढूंढने के बहुत नजदीक थे। सिया को इसलिए हटाया गया कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हो।
उनकी डेथ जब हुई तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक बहुत अहम बात चल रही थी और बात बहुत आगे बढ़ गई थी, सियाचिन से संबंधित थी और सियाचिन के हल के लिए ये बात की जा रही थी पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर। सवाल था इसको कॉवर्ट रूट से जो ये बातें तय की गई थी उनको ओवर्ट रूप में कैसे लाया जाए। तो वो जो करीब करीब सफलता तक पहुंच चुकी थी वो बात एकदम हट गई जब जियाउल हक साहब ने इस डील के लिए अपनी मंजूरी दी, लेकिन उनको अपने कोर कमांडर्स की स्वीकृति तो लेनी पड़ी होगी। तो उन कोर कमांडर्स को, ये मेरा अनुमान है, उन्होंने दे दी अपनी मंजूरी। तो जब उनके सामने पेश किया गया कि साहब ये बातें हो गई हैं, ये मंजूरी हो गई है, तब उनको पता चला कि इससे उनके लिए इसका क्या मायने है। और मुझे लगता है कि उस समय जिन लोगों ने हरी झंडी दिखलाई थी इसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको लगा कि गलत काम कर दिया हमने, इसको किसी तरह रोकना है, और फिर वो रोकने में सफल हो गए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये मामला आगे बढ़ता तो राजीव गांधी को, जियाउल हक को, दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिलती।
कुछ हलकों में ये भी चर्चा थी कि इसके पीछे केजीबी या भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का भी हाथ हो सकता था। मैंने जब ये सवाल ISI के तत्कालीन प्रमुख हमीद गुल से पूछा था कि इसकी कितनी संभावना हो सकती है, तो उनका कहना था
रॉ तो खैर बहुत ही रॉ यानी कच्ची ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त, अब शायद बढ़ गई होगी, उनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं थी जिस किस्म का ये वारदात हुई। केजीबी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन केजीबी ने करना होता तो उस स्टेज पे क्यों करते? केजीबी जब फंसी हुई थी, जब रशिया ने डिसीजन लेना था अफगानिस्तान में रहना है या जाना है, तो उससे पहले वो ये फैसला करते।
एक और थ्योरी है कि सिया के विमान में आम की पेटियों के साथ VS नर्व गैस रख दी गई थी जिससे पायलट बेहोश हो गया और विमान से उसका नियंत्रण जाता रहा। जनरल असलम बेग कहते हैं
एक्सप्लोडिंग मैंगोज की बात करते हैं, वो तो उन्हीं के अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं जनरल महमूद दुर्रानी, ये उन्हीं ने रखवाए थे। फिर आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मैं जिस दिन पहुंचा हूं भावलपुर से, कि उसी दिन मैंने सुनना शुरू किया कि ये जिम्मेदार है जनरल असलम बेग। यानी इस तरह की जो र्यूमर है वो उस वक्त फैलती है जबकि पहले से ये बात तय हुई हो और ये बात आवाम तक फैला दी गई हो। आपको मालूम है कि अमेरिकन का, CIA का इस जंग के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो नेटवर्क पाकिस्तान में बना, तो उनके लिए एक ऐसी अफवाह फैला देना उन्हीं का काम थे।
अभी तक किसी जांचकर्ता ने सभी संदिग्धों को एक जगह इकट्ठा कर रहस्य पर से पर्दा हटाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि शायद सच कुछ लोगों के लिए बहुत कड़वा साबित होता और रहस्य का पर्दाफाश पहले से ही संवेदनशील इस इलाके के लिए और समस्याएं खड़ी कर देता।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
BBC समाचार। फिनलैंड में चाकू मारने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अमेरिका ने चीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी के मामले में आधिकारिक तौर पर जांच शुरू की है। चीन ने कहा कि इस तरह की जांच से दोनों देशों के संबंधों को नुकसान होगा। कीनिया के विपक्षी गठबंधन नासा ने पिछले हफ्ते के राष्ट्रपति चुनाव के विवादित नतीजों को देश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वेनेजुएला में विवादित कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने विपक्ष के बहुमत वाली कांग्रेस की शक्तियां अपने तहत लेने के लिए बहुमत में वोटिंग की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। इससे पहले व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली ने बैनन की स्थिति की समीक्षा की थी। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुने आपने। हरिता कांडपाल से फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया सिंधु वासिनी त्रिपाठी ने, और स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। नमस्कार भारत में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार समय आप जानते हैं 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।